अभी हमारे सन्मुख राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर सविता बेन जी उपस्थित हैं। हम एक हाथ की ताली से आत्मस्वरूप में स्थित होकर उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप और हम अच्छी भांति जानते हैं कि डॉक्टर सविता बहन जी माता पिता के साथ बाल्यकाल से ही बाबा की शिक्षाओं का अध्ययन कर रही हैं। आपने MBBS करके पढ़ाई पूरी करके 1989 में मानवता की सेवा के लिए अपने जीवन को डॉक्टर होते हुए भी विश्व सेवा में समर्पित किया। आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से डॉक्टर की डिग्री हासिल की। 1991 से 2000 तक आपने उदयपुर, कोटा, डूंगरपुर, माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी कुशल चिकित्सक के रूप में सेवाएं प्रदान की। 2007 से आपने परम श्रद्धे विश्व वंदनीय डॉक्टर दादी प्रकाश मणि जी की निजी चिकित्सक के रूप में सेवाएं प्रदान की। राजयोगा एजुकेशन फाउंडेशन, राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के महिला प्रभाग की आप राष्ट्रीय संयोजिका हैं। आपने भारतवर्ष सहित विश्व के भ्रमण के लिए बाबा के संदेश को देने के लिए अनेक बार यात्राएं की हैं, जिससे लाखों आत्माएं प्यारे बाबा के संदेश को प्राप्त कर बाबा के बच्चे बने हैं। आप कुशल वक्ता हैं, विनम्रचित हैं, सहयोग की भावना वाली हैं और सबको प्रभु प्रेम से भरपूर करने वाली हैं। आपके लिए हम इतना ही कहेंगे कि आपकी जब आत्म स्वरूप और परमात्म स्वरूप की महावाक्य उच्चारित होते हैं तो आत्माएं उस परमात्म सूर्य से मास्टर सूर्य के समान बन जाती हैं। ऐसी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर सविता दीदी से हमारा विनम्र निवेदन है कि आज के दिवस के अनुरूप हमें आत्म अनुभूति द्वारा कर्म योगी हम कैसे बने, इस विषय पर अपना मार्गदर्शन प्रदान करें डॉक्टर सविता बहन जी। दो अनाउंस हैं तो अभी हमारी विजय लक्ष्मी बहन दो सूचनाएं दे रही
हैं। अंदर की तेलुगु कन्नड़ ट्रांसलेशन वस्तुन्नदा, ఎవరికి రాలేదో వాళ్ళు చేయొద్దండి. ట్రాన్స్లేషన్ కన్నడ రాలేదా, తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తున్నారు. ఒకవేళ మీకు పెట్టుకోవడానికి రాలేదంటే వెనకల అన్నయ్య అక్కయ్య కూర్చోన్నారు, వాళ్ళతో ఒకసారి పెట్టించుకోండి. కళ్యాణ అక్కయ్య తెలుగు చెప్తున్నారు, మీరు ఒకసారి అది ఫ్రీక్వెన్సీ కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకోండి, మీకు వస్తుంది. మీకు అందరికీ రాలేదని చేస్తారు కదా, వస్తూ ఉంది. ఓకే, తర్వాత ఉదయం ఏదైతే గ్రూప్ ఫోటో తీశారు కదా, అది ఒక్కొక్క ఫోటో ఒక్కొక్కటి 80 రూపాయలు అవుతుంది. ఎవరికి ఎన్ని ఫోటోలు కావాలనో మీ పేర్లు మాకు ఇచ్చినట్లయితే ఆ ఫోటోలు మీకు తెప్పించగలుగుతాము. తర్వాత పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఛానల్ రికార్డింగ్ కోసము ఎవరైతే మీ యొక్క జీవితంలో మంచి అనుభూతి బాబాతో పొందింటారో అందరికీ ఒక ఉదాహరణగా ఏటుగా అటువంటి అనుభవం ఎవరైతే చెప్పాలనుకుంటున్నారో ఆ యొక్క పేర్లు కూడా మీరు మాకు ఇచ్చినట్లయితే మీకు టైమింగ్ కూడా చెప్పగలుగుతాము. ఓం శాంతి.
ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. अच्छा, जो भाई बहने हिंदी समझते हैं वो हाथ उठाएं।
अच्छा, बाकी सबको ट्रांसलेशन मिल रहा है. तो जैसे आज आपका दिवस है आत्म अभिमानी दिवस, सारा दिन हमें आत्मिक स्मृति में रहना है. और न सिर्फ आत्मिक स्मृति में रहना है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ इस स्मृति में भी रहना है. और हमारी आत्मिक स्मृति जितनी अधिक होती है, उतना ही आत्मा के गुण भी हमारे स्वरूप में आते हैं. तो नॉर्मली हमारा अभ्यास कैसा होता है आत्मा का, ऐसे तो बाबा हमें रोज अंडरलाइन कराते हैं साकार मुरली में, हमें देही अभिमानी बनना है, आत्मा समझ करके ही शिव बाबा को हमें याद करना है. लेकिन हम कितना आत्मिक स्मृति में रहते हैं, 63 जन्मों के देह अभिमान के संस्कार हमारे इतने पक्के हैं कि जब हम योग करते हैं, मुरली सुनते हैं, तो उस समय तो हम कोशिश करते हैं, वो भी पूरा समय नहीं, कोशिश करते हैं. लेकिन जब कर्म में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो फिर कर्म कॉन्शियस हम ज्यादा होते हैं, सोल कॉन्शियस की बजाय कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं. और कर्म कॉन्शियस होते होते, माना कर्म योगी हैं तब तक ठीक है, बॉडी कॉन्शियस भी हो जाते हैं, पूरी तरह से विस्मृति में भी आ जाते हैं. तो दोनों में अंतर है, क्योंकि जब हम सोल कॉन्शियस हैं, सोल कॉन्शियस होते हुए हम कर्म कॉन्शियस होते हैं, तो जो हमारे कर्म हैं, वो कर्म हमारे आत्मा के गुणों के अनुरूप होंगे. लेकिन अगर हम बॉडी कॉन्शियस हो गए तो क्या होगा, पुराने संस्कार इमर्ज होने लग जाएंगे. निशानी है देह अभिमान की कि पुराने संस्कार, क्योंकि देह अभिमान विकारों की जड़ है, तो तुरंत कोई भी बात पर गुस्सा आ जाएगा, कोई भी बात में चिढ़ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे. फिर सोचते भी हैं, अमृत वेला भी किया, मुरली भी सुनी, फिर भी स्थिति क्यों हमारी ऊपर नीचे हो रही है. तो क्यों ऊपर नीचे हो रही है, हम कहां सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस में कब आ जाते हैं, वो हमें पता ही नहीं चलता है. और जब आत्मा के गुण इमर्ज रूप में है, जब जितना हमारी आत्माभिमानी स्थिति है, अब ऐसे थोड़ी मैं याद करती रहूंगी मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, याद कर सकते हैं सारा टाइम, लेकिन हमारे सब कॉन्शियस में हमें ये स्मृति है. तो हमारे जो नेचुरल गुण है, नेचुरल गुण कौन से हैं, प्रेम है, शांति है, शक्ति है, पवित्रता है, जो भी हम आनंद है यानी खुशी है, प्रसन्नता जिसको हम कहेंगे, आपस में एक दो के प्रति सहयोग की भावना है. तो जो भी कर्म हम करेंगे, हम इन्हीं का स्वरूप होकर के करेंगे, तब हम कहेंगे हम कर्म योगी हैं. फिर वो कैसी भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में हैं, ना उनका स्वरूप तो कैसा भी हो सकता है, क्योंकि दुनिया में तो देह अभिमानी है ना सब. तो हम सब तो दुनिया में रहते हैं, लौकिक व्यवहार में रहते हैं, नौकरी करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे घर में माताएं हैं, सब थोड़ी ज्ञान में चलते हैं. लेकिन वो आत्माएं कैसी भी हैं, लेकिन मेरा कर्म का स्वरूप कैसा हो, कैसा हो, शांति से हम कर्म करने वाले हैं, प्यार से हम अपना काम करने वाले हैं, है ना. एक होता है हम प्यार से काम करते हैं, एक होता है मजबूरी से काम करते हैं, है ना, एक ड्यूटी प्रमाण करते हैं, और एक होता है दिल से हम काम. एक कर्म योगी कैसे कर्म करेगा, आत्मा के गुण उसमें स्वभाव में है, तो कौन कैसे कर्म करेगा, छोटा भी काम दे दो उसको, कोई भी काम, क्योंकि देह अभिमानी स्थिति है ना, तो देह अभिमान वाली स्थिति क्या होती है, मैं ये हूँ मैं ये हूँ, हम सुनाते हैं ना, मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, हाँ तो उसके कर्म कैसे होंगे, जरा भी किसी ने कुछ ऊपर नीचे कर दिया तो वो अहम आ जाएगा उसको तुरंत, हाँ ये मेरी बात ऐसे क्यों नहीं मानते हैं, ऐसे क्यों नहीं करते हैं, क्यों क्या में, अहंकार क्या है, क्यों क्या में ले जाता है ना, इसको बोलता है बाबा रावण के सिर, रावण को 10 सिर वाला क्यों दिखाया, उसका कारण यही था ना, ऐसे बुद्धिमान था वो, लेकिन क्योंकि अहंकार था इसकी वजह से। लेकिन हम देही अभिमानी होकर जब कर्म करते हैं तो निमित्त भाव से हम कर्म करते हैं, सेवाधारी होकर के हम कर्म करते हैं, आ जाता है निमित्त भाव नहीं आता है। देही अभिमानी स्थिति वाले बाबा कहते हैं कैसे होंगे, बहुत मीठे होंगे, कहता है ना बाबा मुरली में, तो मीठे होंगे माना सुख देने वाले कर्म होंगे हमारे, एक दो को स्नेह देने वाले हमारे कर्म होंगे, सहयोग देने वाले हमारे कर्म होंगे। तो हमें चेक करना है कि क्या हमेशा कर्मों में हमारा ये स्वरूप रहता है या बदलता रहता है। अगर बदलता है तो इसका मतलब हम कर्म योगी से बदलकर देह अभिमान में आ जाते हैं। फिर आत्मिक स्थिति अगर हमारी है तो प्यूरिटी, जो पवित्रता का गुण है, वो आत्मा के अंदर स्वयं को भी अनुभव होगी और दूसरे भी आपसे अनुभव करेंगे। जो आत्मिक दृष्टि वृत्ति है वो शुद्ध दृष्टि वृत्ति है, मैं अपने को आत्मा समझती हूँ और जो मेरे संपर्क में आते हैं उनको भी मैं आत्मा समझ करके ही व्यवहार में आती हूँ। तो फिर हमारे वाइब्रेशंस कैसे होते हैं, कहते हैं ना एक जो योगी है उसकी दृष्टि न्यारी होती है, दुनिया वालों जैसी हमारी दृष्टि वृत्ति नहीं है। तो फिर कैसे भी तमोगुणी वाइब्रेशंस में हम जाते हैं, दुनिया में तो तमोगुण प्रधान है ना, उनका व्यवहार कैसे होता है और हमारा व्यवहार कैसे होता है, तो फिर हमारी जो है वो प्यूरिटी की झलक और फलक, वो हमारे चेहरे से वो रूहानियत का अनुभव दूसरी आत्माएं भी करती हैं। जितना हमारी आत्मिक दृष्टि वृत्ति होगी उतना ही रूहानियत होगी, सीधा कनेक्शन है उसका। तो फर्क होता है ना ब्राह्मण आत्माओं के चेहरे में और अज्ञानी आत्माओं के चेहरे में, फर्क होता है नहीं होता है, तो किस चीज का फर्क दिखाई देता है, प्यूरिटी का ही फर्क है और उससे वो रूहानियत है। हमारे चेहरे पर वो जो चमक है वो पवित्रता की चमक है। कई बार लोग कह भी देते हैं आप कौन सा मेकअप करते हो जो आपके चेहरे चमकते रहते हैं, तो कौन सा मेकअप करते हैं तो जो प्यूरिटी है वही हमारा, देवी देवताओं की ब्यूटी भी कौन सी है, वही डिविनिटी और प्यूरिटी की ही ब्यूटी है, जिसको बाबा कहता है वो नेचुरल ब्यूटी है। तो इसीलिए कहते हैं कि बाबा जब हम आपके बने तो बाबा तुमने बना के अपना हमें खूबसूरत बना दिया, एक गीत है हमारा ऐसा, तो वो जो हमारे नेचुरल गुण है उसकी ब्यूटी है वो। आत्मा के अगर नेचुरल गुण हमारे व्यवहार में है, क्योंकि आंतरिक सुंदरता बाह्य सुंदरता से ज्यादा श्रेष्ठ है, बाह्य सुंदरता तो हमें तुरंत प्रभावित करती है थोड़ा समय के लिए, और फिर वो जैसे ही व्यवहार करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि ये ऐसे हैं तो वो सुंदरता का कितना महत्व रह जाता है। लेकिन जिसके अंदर गुणों की सुंदरता है वो सदाकाल की सुंदरता होती है ना, तो बाबा ने हमें वो प्यूरिटी दी। फिर हम कभी भी जो हमारे आसपास नेगेटिव वाइब्रेशंस वाले हैं, अगर हमारी प्यूरिटी का गुण पावरफुल है तो उनके वाइब्रेशंस का प्रभाव भी हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। कई भाई बहने कहते हैं बहन जी क्या करें, हम दुनिया में रहते हैं ना, ऐसे लोगों के संपर्क में हमें आना पड़ता है, तो कई बार हमारी स्थिति पर उसका असर आ जाता है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? जो हिंदी समझते हैं वो तो जवाब दे सकते हैं, नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि हम विश्व परिवर्तक हैं। बाबा पतित पावन है तो हम कौन है? मास्टर पतित पावन है। बाबा के कार्य में हम राइट हैंड बनकर के दुनिया का परिवर्तन कर रहे हैं ना, है या नहीं? विश्व कल्याणकारी है या नहीं? विश्व सेवाधारी है या नहीं? क्या कहेंगे? तो फिर अगर मैं ही उनके प्रभाव में आ गई तो मैं क्या परिवर्तन करूंगी? अगर मुझे परिवर्तन करना है तो मैं उनसे पावरफुल होंगी, तब तो उनकी पतित वृत्ति को मैं पवित्र बना सकती हूँ। बाबा कहते हैं आपको तो प्रकृति को भी पावन बनाना है। ये तो मनुष्य आत्माएं हैं, तो मेरे संपर्क में आकर के वो खुद ऐसा महसूस करें कि इनसे मिलकर तो हमारा मन ही शुद्ध हो गया, है ना। हम क्या सोचते थे, कई बार शुरू शुरू में दादियां अपना अनुभव सुनाती थी जब वो सेवा पर निकले ना, यहाँ से मधुबन से, मधुबन का बिगड़ी पार्ट था उस समय, तो बाबा ने दादियों को सेवा पर भेजा, तो वो पहले तो कभी जाते ही नहीं थे बाहर, तो बहनों की संस्था है ये तो एक नई बात थी। भले ही दुनिया की सेवा नहीं कर रहे थे, अभी भारत में ही सेवा कर रहे थे, तो लोगों की नजर कैसी थी उस समय कि ये बहनें क्या सेवा करेंगी, माना उनको लगता था कि बहनों की संस्था है माना, तो कई लोग गलत दृष्टि से आ जाते थे सेंटर पर। लेकिन जब वो ज्ञान सुनते थे, बहनों से मिलते थे, उनके जो वाइब्रेशंस को वो फील करते थे, तो वो समझ जाते थे कि जो हम सोच रहे हैं वो गलत है। और ऐसी आत्माएं भी बाबा के वारिस बच्चे बन गए। तो क्या कर दिया उन्होंने, अपनी वृत्ति से उन आत्माओं की वृत्ति को भी परिवर्तन कर दिया। तो वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन, ये बाबा हमें सिखाता है ना। अंतिम सेवा क्या है हमारी, कि हमारी वृत्ति से सामने वाले की वृत्ति बदल जाए, इतना हमारी प्यूरिटी पावरफुल हो, है या नहीं? क्या कहेंगे? या हमें उनके प्रभाव में आ जाना है? नहीं। तो ये कर्म योगी की निशानी है कि वो खुद भी पवित्र हैं और औरों को भी पवित्र बनाने वाले हैं, और अपने गृहस्थ को भी आश्रम जो पवित्र स्थान है, आप पवित्र युगल रहते हो घर में, बाबा तो हमें वो धारणा देते ही है ना। तो पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन है, तो हमारा गृहस्थ अब क्या हो गया, जो पवित्र स्थान है उसे क्या कहते हैं, गृहस्थ आश्रम कहते हैं ना। तो अभी हमारा गृहस्थ ही आश्रम है। और जो कर्म योगी है वो न्यारा और प्यारा होता है। आत्मिक स्थिति हमें न्यारा और प्यारा बनाने वाली है, और उसी से हम कर्मों में जब चाहें कर्म करें कर्मेंद्रियों से, जब चाहें हम न्यारे हो जाएं। हो सकते नहीं हो सकते? हम बताते हैं ना अष्ट शक्तियों में कछुआ है, वो किसका मिसाल है, किसका मिसाल है? कछुआ जब चाहे अपने कर्मेंद्रियों से खाता है, चलता है, और जब चाहे अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है। तो जब चाहे हम न्यारे हो जाएं, जब चाहे हम प्यारा बन करके कर्म करें, अपनी मन बुद्धि को पूरी तरह से हम एकाग्र करके कुशलता से कर्म करें। एक कर्म योगी कर्म कुशल होता है ना, गीता में भी कहा योगेषु कर्म कौशलम। तो एक योगी जो है वो कर्म में कुशल है। क्यों कुशल होता है, क्यों कुशल होता है योगी कर्मों में? कौन है उसका साथी, किस कौन साथी है? परमात्मा हमारा साथी है। तो जब सर्व समर्थ मेरा साथी है तो मेरे कर्म कैसे होंगे, क्योंकि ईश्वर की शक्ति जुड़ गई ना कर्मों में। पहले हम खुद कर्म करते थे, मैं कर्म करती हूँ और भगवान की याद में मैं कर्म करती हूँ, फर्क होगा या नहीं होगा? कर्म योगी का मतलब ही क्या है, आत्मा समझकर कर्म करना, प्लस साथी कौन है, शिव बाबा मेरा साथी है। तो फिर हमारे कर्म इतने समर्थ होते हैं कि हम कम समय में अधिक कर्म कर लेते हैं। जो काम पहले हम 2 घंटे में करते थे, अभी 1 घंटे में हम उसको, हमारे समय की बचत होती है, शक्ति की बचत होती है, अगर हम कर्म योगी बनकर के कर्म करते हैं। और अगर हम साधारण स्मृति में जैसे दुनिया वाले कर्म करते हैं, अगर भूल जाते हैं, विस्मृति में आए तो फिर हम कर्म योगी नहीं है, है ना, तो फिर दुनिया वालों जैसे ही हमारा होता है। और हिसाब किताब भी बदल जाता है, अगर हम कर्म योगी बनकर कर्म कर रहे हैं तो हमारी प्राप्ति क्या होती है, उस श्रेष्ठ कर्म का फल, क्योंकि कर्म योगी जो कर्म कर रहा है वो सत्कर्म है, सत्कर्म है, तो सत्कर्म का फल क्या है, 1 का पदम गुना, दुनिया में 1 का 1 गुना। अच्छा कर्म किया तो उसका फल कितना मिलने वाला है, जैसा कर्म वैसा फल। लेकिन हमारा कैसे है, बाबा की याद में हमने कर्म किया, बाबा की श्रीमद प्रमाण हमने कर्म किया, यानी कर्म योगी बनकर के कर्म किया, तो वो पद्मा पदम पति बनाने वाला है, कदम में पदम, बाबा हमें ये कहता है। तो ऐसा महसूस करते हैं कि 1 कदम उठाते हैं और हमारी पद्मों की कमाई हो जाती है। दुनिया में बाबा कहता है आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो, कोई भी इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता, आज की दुनिया में कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो हो सकता है 1 दिन में करोड़ कमा लेता होगा, लेकिन 1 कदम उठा के पद्म कमा ले, ऐसा कोई हो सकता है, हो सकता है नहीं। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ना कि आप बच्चे बाबा के VIP बच्चे हो, बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो, फिर देखने में तो साधारण है, देखने में तो ऐसा कुछ नहीं लगता है, दुनिया की नजरों में क्या है, साधारण है ना, लेकिन हमें पता है कि हमारी सिर्फ इस जन्म की कमाई नहीं हो रही, कितने जन्मों की हो रही है, 21 जन्मों की कमाई हम थोड़े समय में, कितना समय मिलता है संगम युग का, कोई हमें पूरा संगम युग तो नहीं मिला, थोड़ा सा समय मिला, लेकिन उस थोड़े से समय में ही हम 21 जन्मों की इतनी कमाई तब जमा करते हैं जब हम कर्म योगी बनकर के कर्म करते हैं। साधारण रीति से करेंगे तो नहीं होगा, तो हर कर्म में बाबा की याद है। तो कई लोग कहते हैं हमारा तो बहुत बुद्धि वाला काम है, अब जो भी कंप्यूटर्स पे काम करते हैं या जो भी कोई दिमाग के जो भी काम करते हैं, तो समझते हैं कि सारा समय तो बाबा की याद नहीं रह सकती है, तो फिर कैसे करेंगे, बाबा की याद में कर्म कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। कुछ होंगे ना IT वाले भी बहुत है ना बैंगलोर में, 10-10 घंटे उनको अपनी नौकरी पे रहना पड़ता है, आजकल इतना मतलब कंपनियां जो है वो इतना काम लेती हैं, तो फिर कैसे कर्म योगी बनकर कर्म कर सकते हैं। तो बाबा कहता है जब आप कर्म शुरू करते हो तो बाबा की याद में कर्म शुरू करो, बाबा को समर्पित करो वो कर्म कि बाबा आपके लिए मैं कर रहा हूं, है ना, तो कौन सा भाव आएगा, कौन सा भाव आएगा, ट्रस्टी भाव, करण करावनहार कौन है, बाबा मेरे से करा रहा है, मैं आत्मा कर रही हूं नहीं। तो चाहे कितना भी फिर बुद्धि वाला काम है, एक बार मैंने बाबा को 13 कह दिया, वो जिम्मेवारी बाबा को दे दी, बाबा को समर्पित कर दिया, तो फिर वो जैसे कि सारा समय ही बाबा हमारे साथ है, भले हमें वो याद नहीं है, लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस है वो किस उसमें है, किस स्थान में है, जो बताया कि हम नेचुरल रूप से हम सारा दिन आत्मा आत्मा याद नहीं कर सकते, नेचुरल रूप में बाबा भी हमें पूरा समय अगर कोई हमारे ऐसे कर्म हम कर रहे हैं तो नहीं याद रह सकते, लेकिन जो हमारी स्थिति है वो इस तरह की है कि हमें ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे बाबा हमसे करवा रहा है। तो जो हम मम्मा बाबा को देखते थे, मम्मा बाबा को देखा ना, कैसे मम्मा बाबा ने कर्म किए, भले ही साधारण कर्म किए, बच्चों के साथ बाबा ने वो कर्म किए, लेकिन हमेशा ऐसे कर्म जो दूसरों को प्रेरणा देने वाले थे ना, वही कर्म चरित्र बन गए ना। आज हम बाबा के वो कर्म यादगार हैं ना, कि बाबा ने कभी अपनी अथॉरिटी नहीं दिखाई कर्म करते हुए कि मैं बाबा तो अथॉरिटी थे ना, भगवान का रथ थे सीधा, कोई लौकिक जीवन में भी वो कोई कम नहीं थे। तो दुनिया में होता है ना, थोड़ा तो वो रौब रखते हैं अपना जो जो भी कुछ है। तो कभी भी बाबा ने ऐसा कर्म करते हुए अनुभव नहीं होने दिया, चाहे वो फिर सब्जी काटी, चाहे वो अनाज साफ किया या जो भी। और अनुभव क्या होता था, बाबा जो भी कर रहे हैं, स्थिति इतनी ऊंची होती थी बाबा की, वो स्मृति स्वरूप की स्थिति होती थी कि कोई उस समय अगर मिलने भी आ गया है तो साक्षात्कार हो जाते थे। हम सुनते हैं ना बाबा की, जब हिस्ट्री सुनते हैं तो हमें मालूम है, तो हमें भी साक्षात्कार मूर्त बनना है तो किससे साक्षात्कार होगा, दुनिया में सबसे पहले संपर्क में क्या आता है, कर्म से ही हम संपर्क में आते ना, हमारा बोल और व्यवहार ही तो लोगों के सामने पहले आता है, उसी से हम पहचाने जाते हैं। तो एक कर्म योगी का व्यवहार कैसा होगा और उससे हमारा साक्षात्कार, और उसके लिए भी हमें विशेष अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है, क्या अभ्यास करना है, कि मैं आत्मा, आत्मा तो हूं लेकिन मुझ आत्मा का ये शरीर भी क्या है, आकारी है, मैं डबल लाइट हूं, यानी मेरा शरीर भी लाइट फरिश्ता रूप है, और फरिश्ता समझ करके दूसरी आत्माओं को भी फरिश्ता देखना, ये अभ्यास हमें बढ़ाना है। ये पुरुषार्थ है, बाबा ने ये किया, ब्रह्मा बाबा को भी जब पता चला है ना, सुनते हैं ना हम कैसे बाबा ने वतन में, जब संदेशी ने संदेश लाया कि ऊपर बाबा की जो लाइट है वो फरिश्ता रूप है, बाबा का वहां डिमास का शरीर नहीं है, तो उस दिन से ही बाबा ने वो अभ्यास करना शुरू किया, तो बाबा के फरिश्ते रूप का साक्षात्कार होना शुरू हुआ। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों को भी अंत समय में ये साक्षात्कार मूरत का पाठ बजाना है, लेकिन उन्हीं से होगा जिनका ये अभ्यास होगा, अगर नहीं है तो होगा, वो साक्षात्कार करा सकेंगे ना? तो वो तो लाइट स्वरूप के द्वारा ही हो सकता है। दुनिया में भी हम जो कुछ भी देखते हैं लाइट से ही देखते हैं ना, बिना लाइट के अंधेरे में कुछ दिखता है क्या, देख सकते हैं नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि जब आपका लाइट स्वरूप होगा, डबल लाइट स्वरूप होगा, तभी आप आत्माएं साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। और कर्म योगी बनना माना कर्मेंद्रियों के अधिकारी बनना, आत्मा अपनी इंद्रियों की मालिक है। तो हम स्वराज्य अधिकारी स्थिति का अनुभव करते हुए कर्म करें, अधीन होकर के नहीं, कर्मेंद्रियों के वश होकर के नहीं। एक कर्मयोगी कभी भी कर्मेंद्रियों के वश नहीं होगा, दुनिया में ऐसा नहीं है। दुनिया में लोगों के कर्म कैसे होते हैं, जो नहीं देखना है वो नहीं देखते हैं, जो नहीं देखना है वो देखते हैं, जो नहीं सुनना है वो सुनते हैं, जो नहीं बोलना है वो बोलते हैं, और जो नहीं करना है वो करते हैं, और फिर मायूस होते हैं, दुखी होते हैं, अरे मैंने ऐसा कर दिया, होता ही नहीं होता, थोड़ा पश्चाताप तो होता है ना, ऐसा तो करना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। और जो कर्मेंद्रिय का अधिकारी है वो कभी भी परेशान या अशांत नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों के दास हैं तो क्या बनने वाले हैं, दास दासी बनने वाले, वो कर्म हमें उस पोजीशन तक ले जाएंगे। लेकिन स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनने वाले हैं, तो वो सदा ही मौज में रहेंगे। जो कर्म इंद्रियों के अधिकारी हैं, माना आंखों द्वारा जो देखना है वो श्रीमत प्रमाण वही देखना है, पता ही है आत्मा को ही देखना है, देह पर हमारी नजर नहीं जानी चाहिए। फिर वो चाहे कोई भी हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी गुणवान हो, गुणों पर नजर जाए लेकिन देह पर नजर नहीं जानी चाहिए। ये बाबा की हमारी दृष्टि के लिए श्रीमत है, हमारी सिविलाई ही चाहिए, है ना। तो अगर मेरी ये दृष्टि है बाबा की श्रीमत अनुसार, वही कर्म होगा आत्मा से। आंखों के द्वारा हम यही कर्म करते हैं, देखने का कर्म आत्मा करती है। कानों के द्वारा क्या सुनना है हमें पता है, है ना, पता है ना क्या सुनना है, क्या सुनना है। थोड़ा आप लोग भी बोलेंगे ना तो ये टाइम ऐसा होता है, नाश्ता करके बैठते हैं ना तो थोड़ा नींद में जा सकते हैं, तो थोड़ा आप भी एक्सरसाइज करो। तो कानों के द्वारा क्या सुनना है, ज्ञान की ही बातें, जो बातें हमारी उन्नति कराने वाली हैं, हमें आगे बढ़ाने वाली हैं, या जो भी हमारा कार्य है उससे संबंधित कुछ भी है जो मतलब हमारे लिए उपयोगी है। कोई भी व्यर्थ चिंतन पर, चिंतन पर दर्शन की बातें नहीं सुनना है। और अगर सुनना पड़ता है, मानो कईयों की ऐसी मजबूरी होती है कि भाई हम निमित्त हैं, जिम्मेवार हैं, अगर कोई हमें सुना रहा है तो फिर हमें कोई निर्णय देना है तो सुनना ही पड़ेगा, तो फिर सुनते हुए भी नहीं सुनना, यानी उसका प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े। तो क्यों कहते हैं दो कान दिए भगवान ने, एक कान से सुनो दूसरे कान से बाहर निकाल दो, है ना। लेकिन निकालते नहीं है, नहीं निकालते हैं क्योंकि बीच में दिमाग आ जाता है, और कान की जो शेप है ना वो भी क्वेश्चन मार्क वाली है, तो बिना क्वेश्चन मार्क के दिमाग में फिर संकल्प होते नहीं हैं। तो इतना सोच लेते हैं कई बार, फिर कान से निकालने की बजाय मुंह से निकालते हैं। अब यहाँ प्रेशर हो जाएगा तो कहाँ से निकलेगा, बिना सुनाए रह नहीं सकते फिर, तो इसको हम कर्मयोगी नहीं कहेंगे। ठीक है, वर्ष हो गए ना, ऐसे ही मुख से वचन निकले तो धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, सत्य बोलो। बाबा ने बोल के लिए कितनी हमें श्रीमत दी हुई है, कम बोलो, अंतर्मुखी रहो, ज्यादा उतना ही बोलना है जितना जरूरी है। तो अगर हम इसी प्रमाण अपने जीवन में चलते हैं, या फिर जो कर्म करना है, अमृत वेले से रात तक बाबा ने हमें श्रीमत दी है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, पता है ना, श्रीमत मिली हुई है ना अमृत वेले से। तो अमृत वेले से वैसी ही मेरी दिनचर्या चलती है तो मैं कर्मयोगी हूं। बाबा की श्रीमत प्रमाण मेरी दिनचर्या चलनी चाहिए। तो अमृत वेले उठते ही मुझे क्या संकल्प हो, क्या संकल्प करना है, मैं कौन हूं, आत्मा तो हूं लेकिन मैं परम धाम से अभी अभी इस तन में अवतरित हुई हूं, अपने कर्तव्य करने के अर्थ या धर्म स्थापन करने के अर्थ मैं आत्मा अवतरित हुई हूं। तो अवतार कैसे होते हैं, वो अपना कार्य करते हैं और फिर न्यारे हो जाते हैं, जो हम बात कर रहे थे ना कि योगी न्यारा और प्यारा होता है। तो न्यारे होने की कला हमें योग से ही आती है, दुनिया वालों को न्यारा होना नहीं आता, इसलिए उनके जीवन को हम कमल फूल समान नहीं कहेंगे ना। हम कहते हैं हमारा जीवन कमल पुष्प के समान है, तो घर गृहस्थी में रहते हुए भी हम फंसे हुए नहीं हैं, लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए, संसार में रहते हुए भी हम न्यारे हैं। बाबा हमें कर्म सन्यासी तो नहीं बनाता है ना, कर्म योगी बने। कर्म सन्यासी क्या करते हैं, घर बार छोड़ करके चले जाते हैं, और हम घर ग्रस्त में रहते हुए भी बेहद के सन्यासी हैं। तो कैसे बेहद के सन्यासी हैं, क्या सन्यास किया, वही तो खा रहे हैं, वही तो पहन रहे हैं, हाँ वही तो सब साधन यूज कर रहे हैं, तो कौन सा संन्यास किया आपने? हाँ तो कौन सा संन्यास किया? विकारों का। जो बुराइयां हमारे अंदर आ गई इतने जन्मों से, उसको संन्यास करने का संकल्प हमने किया, और उसमें देह अभिमान सबसे बड़ी बीमारी है ना, तो ये हमने संन्यास किया। तो वो कर्म उस अनुसार, अमृत वेले से रात तक कोई विकारों के वश तो हम नहीं हुए, वो सन्यासी बनकर रहे हम, बेहद की वृत्ति रही हमारी, मुरली सुनी तो उस विधि पूर्वक सुनी, जो बाबा हमें जिस तरह से कहते हैं कि हमें मुरली सुनना है, और केवल सुनना नहीं उसको समाना है, और फिर मनन भी करना है, फिर दिन में ब्रह्मा भोजन, जैसे ब्रह्मा भोजन हमें करना चाहिए, विधि पूर्वक हम बाबा की याद में बनाएं और उसे बाबा को भोग लगा करके फिर हम उसे स्वीकार करें, उसमें कहीं अलबेलापन तो नहीं आता है, क्योंकि तब उसमें हमारी कमाई है ना? बाबा के श्रीमत अनुसार जितना हम चल रहे हैं वही कदम में पदम, वो कहते हैं ना आम का पेड़ लगाने की तरह है, कि एक बार आपने आम का पेड़ लगा दिया तो शुरू में वो नहीं दिखता है, क्योंकि आम आने में 2 साल लग जाएगा, 3 साल लग जाएगा, लेकिन एक बार वो फल देने लगेगा तो फिर हम ही नहीं खाते, हमारी पीढ़ियां भी उसको खाती है, उसको कहते हैं दादा बोए और पोता खाए। तो ऐसे हमें वो फल मिलता रहता है कि वर्तमान में ही, बाबा कहते हैं डबल फल देने वाला, कि केवल वर्तमान में ही खुशी और शक्ति का अनुभव नहीं होता, बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म करते हैं तो कैसा अनुभव होता है? भारीपन लगता है या खुशी होती है? कई सोचते हैं कितना कठिन है, दुनिया में लोग आराम से सोते रहते हैं, रात को देर से सोते हैं, सुबह 10 बजे तक सोते रहते हैं, तो ऐसी जिंदगी, ऐसी भी जिंदगी है ना लोगों की, आज की लाइफस्टाइल क्या है, और हमें क्या है, सवेरे सवेरे 4 बजे उठो, हाँ बाबा को याद करो, योग लगे ना लगे पर याद तो करना ही है, फिर मुरली सुनने जाओ सुबह सुबह, रोज की स्टूडेंट लाइफ है, कठिन लगता है या सहज लगता है? किसी किसी को कठिन भी लगता होगा, हाँ ये क्या रोज रोज पूरा जिंदगी, चलो 4-5 साल की पढ़ाई है वो तो बात अलग है, ये तो पूरी जिंदगी की पढ़ाई है, क्या कहेंगे हाँ? तो जो समझते हैं सहज है, सहज किसको होगा? जो कर्म योगी बनकर रहेगा, क्योंकि बाबा की शक्ति मिल रही है ना हमको, बाबा की शक्ति से हमारे लिए सब सहज है। दुनिया में लोग क्यों नहीं कर पाते, पता है उनको भी कि सुबह जल्दी उठने से हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, सुबह जल्दी उठने से हमें कितना टाइम मिलेगा, आधा दिन हो जाता है तब तो वो लोग उठते हैं, तो फिर टेंशन में काम करते हैं, क्योंकि काम तो उतना ही करना है, तो दिन ही टेंशन से शुरू होता है, ये भी करना है वो भी करना है ये सब, और हम कितना आराम से अमृत वेले से हमारे पास कितना टाइम होता है अपने लिए, सुबह सुबह ही इतना पॉजिटिव एनर्जी जो बाबा की शक्ति है हमारे अंदर भर जाती है ना? तो बाबा की शक्ति मिलती है तो हमें ये जीवन सहज लगती है, वो में हमारे लिए एबनॉर्मल है, क्या कहेंगे, अननेचुरल है या नेचुरल है, क्या कहेंगे बताइए, ये जीवन नेचुरल है या जो लौकिक दुनिया वाले लोग जीवन जीते हैं वो नेचुरल है ना? वो तो मन मौजी होते हैं, मन मौजी होते हैं माना, जैसे मन चला रहा है वैसे चलते हैं, जो मेरे मन में आया वो कर लिया मैंने, जो खाने की इच्छा हुई वो खा लिया, हाँ या जो फिल्म देखने की इच्छा हुई मैंने देख लिया, या जहाँ रेस्टोरेंट में खाने की इच्छा हुई आज ये खाना है, जो भी बहुत सारे स्वादिष्ट चीजें, आजकल तो कितना जंक फूड मिलता है, हाँ ये खा लो और ऑर्डर करके मिल जाता है, फटाफट घर में ला के दे देते हैं, तो मौज ही मौज है, ऐसे उनके जीवन में मौज ही मौज है, हमको तो कुछ भी नहीं खाना है, किसी को कोई ऑर्डर करके मंगा नहीं सकते हम, तो ये है कर्मेंद्रियों के अधीन जीवन। और जिसके परिणाम क्या हैं, तात्कालिक क्या बोलते हैं, तात्कालिक जो परिणाम है वो तो बहुत सुख देने वाले हैं, उस समय तो मजा आता है, लेकिन बाद के परिणाम, बाबा कहता है एक है सात्विक पुरुषार्थ, एक है तामसिक पुरुषार्थ। तो जो तामसिक कर्म होते हैं ना, वो तुरंत हमें सुख देने वाले होते हैं, लेकिन उनके भविष्य परिणाम बहुत बुरे होते हैं। लेकिन जो सात्विक कर्म होते हैं वो तुरंत हमें सुख नहीं देने वाले होते, उसमें हमें पुरुषार्थ मेहनत लगती है, लेकिन उसके भविष्य परिणाम सदा सदा सुख देने वाले होते हैं। तो ये हमारे कर्म जो है वो ऐसे कर्म है कि हमें सदा ही उसका सुख, जो बाबा कहता है वर्तमान में भी और भविष्य में भी हम कितने सुखी हो जाएंगे कि हमारे जैसा सुखी कोई है ही नहीं, तन मन धन सब संबंध सब में हम सुखी हैं। और फिर कर्म योगी कौन है? कर्म योगी वो है जो कर्म भोग को भी कर्म योग से चुकतू करता है। कर्म भोग भी आते रहते हैं क्योंकि हिसाब किताब तो चुकतू करने ही है, फिर किसी भी रूप में आए, चाहे वो तन के रोग के रूप में आ जाए, चाहे संबंधों में हिसाब किताब के रूप में आ जाए, चाहे धन के रूप में ही, धन ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो धन तो चाहिए ना इंसान को अपने जीवन निर्वाह के लिए, धन भी चाहिए। किसी भी रूप में बहुत सारी अनहोनी जीवन में होती रहती है, जो हम कहेंगे हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब किताब होते हैं, लेकिन कैसे चुकतू करते हैं हम? तो जितना हम सोल कॉन्शियस हैं, जितना हमें बाबा की याद है, उसको बोलते हैं रूहानी कॉन्शियसनेस। तो हमें कर्म भोग नहीं लगेगा, लेकिन कर्म भोग भी हमें, बाबा कहते हैं तूफान भी तोहफे की तरह लगेंगे। कैसे पार करेंगे हम? जैसे कि और ही हमारे लिए वो आगे बढ़ाने का अवसर है, या वो हमें अनुभवी बना रहा है, या ये पेपर हमने कैसे पास किया, पास विद ऑनर होके, पेपर तो आया जीवन में लेकिन पास विद ऑनर होके हमने उसको पास कर लिया। चाहे शरीर का पेपर आए तो जो कर्मयोगी होगा उसके चेहरे से नहीं दिखाई देगा, जो राजयोगी होते हैं उनका चेहरा कैसा है? सदा प्रसन्न चित। चाहे तन की बीमारी, आज कल कौन है जिसको तन की बीमारी नहीं है? छोटी मोटी बीमारी तो लगी ही रहती है, और कभी कभी बड़ी बीमारी भी हो जाती है, कभी कभी गंभीर बीमारी भी हो जाती है, होती नहीं होती? क्या कहेंगे आप में से कोई कहेगा मैं पूरी तरह हेल्दी हूँ 100%? कोई भी नहीं है। तो हिसाब किताब तो हम चुकतू कर ही रहे ना, तो फिर हम उस कॉन्शियस में रहते हैं क्या? बीमारी कॉन्शियसनेस में रहते हैं? और दुनिया वालों को देखो, जरा सी बीमारी डायग्नोस हो जाएगी तो उनका चेहरा बिल्कुल लटक जाता है, एकदम उदास परेशान, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा और मेरे परिवार का क्या होगा, क्या क्या चला, उनके संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं। और हम सूली से कांटा अनुभव करते हैं। कोई भी हिसाब किताब कैसे लगता है हमें? बाबा की याद की शक्ति है, आत्मा तो स्वस्थ है ना हमारी, आत्मा स्वस्थ है या नहीं है? तो हमारी आत्मा स्वस्थ है उसके कारण, अच्छा ट्रांसलेशन वाले हाथ उठा रहे, तो हमारी आत्मा स्वस्थ है उसके कारण तन का हिसाब किताब भी हमें हिसाब किताब नहीं लगता है। हम दादियों को देखते थे क्योंकि दादियों के साथ रहने का सौभाग्य मिला ड्रामा में, तो चाहे बड़ी दादी जी थे, चाहे गुलजार दादी जी, चाहे दादी जानकी तो 104 साल तक भी कितने एक्टिव थे हम सबने देखा, और गुलजार दादी जी का तो यूं कि दादी के कारण ये ग्लोबल हॉस्पिटल बना। दादी ऑपरेशन के लिए बॉम्बे गए थे, मैं वो अनुभव सुनाती हूँ जो नए नए भाई बहने हैं उनको शायद नहीं पता होगा, पुरानों को तो मालूम है ना। तो दादी जब ऑपरेशन के लिए गए वहां बॉम्बे के लिए, बॉम्बे में, तो जिन डॉक्टर ने दादी का ऑपरेशन किया वो दादी से इतना प्रभावित थे, क्योंकि वो देखते थे जब ऑपरेशन के बाद जब वो और मरीजों से मिलते थे तो हरेक कोई ना कोई कंप्लेन करता था, मेरे को दर्द हो रहा है ना, मेरे को ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। और दादी के पास जब मिलने जाते थे तो दादी मुस्कुराते हुए पूछती थी, डॉक्टर कैसे हो? उनको लगता था ये कैसा मरीज है कोई कंप्लेंट ही नहीं करता है, तो उन्होंने डॉक्टर को आगे से पूछना पड़ता था, दादी आपको दर्द नहीं है? तो दादी कितनी नहीं दर्द है। तो क्योंकि जब बाबा की शक्ति हमारे साथ है तो दर्द भी हमें फील नहीं होता है। उसका कारण है कि साइंस की तरफ से भी माना, जब हम योग करते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन, एनकेफेलिंस और सेरोटोनिन्स बनते हैं, और ये नेचुरल पेन किलर्स हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं। और अगर हमारा योग अच्छा है, अब दादी जैसा योग तो हम सबका है भी नहीं, दादी का योग तो कितना ऊंचा था, तो नेचुरली दादी को वो पेन की फीलिंग और जो लोगों को पेन की फीलिंग है उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं थी। तो थी नहीं दादी को पेन की फीलिंग, तो दादी कहती थी नहीं मेरे को तो कोई दर्द है ही नहीं। फिर वो ये तो दादी को देख के उनको ये तो पता था कि ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से हैं, तो वो फिर आगे से उन्होंने वो पूछते थे, दादी आप क्या करते हैं ऐसा जो आपको दर्द ही नहीं है? तो दादी ने कहा हम योग करते हैं। तो फिर दादी ने उनको योग के बारे में बताया तो उनको इंटरेस्ट हुआ। फिर दादी ने कहा आप हमारे माउंट आबू आओ, माउंट आबू में आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फिर सचमुच उन्होंने दादी जी का निमंत्रण स्वीकार किया ना, वो डॉक्टर है, डॉक्टर अशोक मेहता। तो वो आए यहाँ पर, और जब वो यहाँ आए तो उन्होंने देखा अच्छा इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल संस्था, इतने लोग यहाँ आते हैं। तो उनको संकल्प चला कि यहाँ एक हॉस्पिटल भी होना चाहिए, अचानक कोई मरीज को कोई इमरजेंसी हो जाती है तो फिर उसको कहाँ ले जाना है, पालनपुर, अहमदाबाद, तो 2 घंटे का रास्ता यहाँ से पालनपुर, तो 2 घंटे तक तो अब कोई हार्ट पेशेंट होते हैं। एक्चुअली हुआ ये कि उनके सामने किसी को हार्ट अटैक हुआ और यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो कर ही नहीं सकते थे, उसको वहीं ले जाना है, पालनपुर ही ले जाना है। अब कई हार्ट पेशेंट्स थोड़ी 2 घंटे का टाइम होता है उनके पास ना, तुरंत इलाज की जरूरत होती है। तो फिर निर्वैर भाई जी को ये बात समझ में आई, उन्होंने दादी जी से बात की, और फिर कुल मिलाकर जो उनकी मीटिंग हुई तो फिर ये निर्णय हुआ कि यहाँ पर हॉस्पिटल बनाना है। और फिर उन्होंने डॉक्टर अशोक मेहता जी से कहा कि देखो आपने बोला है तो आपको ये हॉस्पिटल संभालना है। तो हालांकि वो बीके नहीं थे ना, लेकिन उनको उन्होंने देखा इतना बड़ा सेवा कार्य यहाँ चलता है, और जैसे कहा कि दादी जी से मिले उनसे तो प्रभावित थे, लेकिन यहाँ आकर के और ही उनका पूरा मन परिवर्तन हो गया। और वो तो बीके भी बन गए, अभी तो बाबा के वो वारिस हैं, समझो वारिस बच्चे हैं। अभी तक भी अशोक मेहता जी जो हैं वो बहुत सेवा करते हैं कि हाँ विद फैमिली पूरा ज्ञान में। उनकी बेटी ने ही हॉस्पिटल डिजाइन किया, जो आर्किटेक्ट ग्लोबल हॉस्पिटल जो बना है ना, उसकी डिजाइन बिल्कुल अलग है, आपने देखा गोल गोल बनाया उसको। तो वो उनकी बेटी आर्किटेक्ट उसी समय पास हुई थी वो, तो उसने खुद डिजाइन किया उसको, और 1-1.5 साल के अंदर तो हॉस्पिटल बनकर के तैयार हो गया। और उस हॉस्पिटल से कितने डॉक्टर्स की सेवा हुई है, पूरे भारत नहीं विदेश में भी। दादी ने जानकी फाउंडेशन शुरू किया ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए। तो मैं यही बता रही हूँ कि अगर हम सचमुच कर्म योगी बनकर अपना कर्म भोग चुकतू करते हैं तो हम सेवा के निमित्त बन जाते हैं, और आत्माओं को भी प्रेरणा मिलती है ना। तो रोगी नहीं लेकिन क्या है, कर्म योगी। कभी भी अपने को रोगी समझ, रोग तो मैंने कहा ना कोई रोग से मुक्त है ही नहीं आज के जमाने में, लेकिन कभी भी बीमारी कॉन्शियसनेस में नहीं आना है, हमेशा अपने आत्मिक स्वरूप की अनुभूति में रहना, जो मैं आत्मा हूँ, जो मुझ आत्मा के निजी गुण है, और हमेशा ये संकल्प रखना है कि मैं स्वस्थ हूँ। तो जो हम सोचते हैं मन में वही हमारा शरीर फॉलो करता है। तो हमेशा अपने उस सतयोगी स्वरूप को, हमारा सतयोगी स्वरूप कभी बीमार होता है, कभी बीमार पड़ता है, देवी देवताएं कभी बीमार होते हैं नहीं, सदा ही निरोगी हैं। तो फिर मुझे वो स्वरूप इमर्ज रूप में रखना है कि अब तो हमेशा के लिए ही हम स्वस्थ बनने वाले हैं, और 1 जन्म नहीं 2 युगों तक हम सदा ही स्वस्थ रहने वाले हैं। ये तो थोड़े समय का हिसाब किताब है। और तन भी मेरा तो नहीं है, बाबा का तन है, अभी हमने तन मन धन तीरा कहा, तो फिर तन की जिम्मेवारी भी किसकी है? बाबा की जिम्मेवारी। तो बाबा ने मुझे ये सेवा अर्थ दिया है और मैं साक्षी होकर के कर्मेंद्रियों से अपना ये हिसाब किताब चुकतु कर रही हूं। तो जैसे ही हमारा, क्योंकि आत्मिक स्थिति माना साक्षी भाव, तो जैसे ही शरीर के प्रति भी हमारा साक्षी भाव होता है ना, तो मोह नहीं रहता। इंसान को मरने का डर, मोह क्या है, सबसे बड़ा मोह क्या है शरीर का, मरने का डर होता है। अब ये बीमारी हो गई, मर जाएंगे, जो भी कोई ऐसी ऐसी बीमारी हो जाती जो जिनसे मरता है इंसान। तो फिर यहाँ पर क्या कहता है बाबा, हम तो वैसे ही मरजीवा हैं, मरजीवा जन्म है ना ये, तो तन से तो तन हमने जब बाबा को दे दिया, जब मेरा तन है ही नहीं तो फिर मोह तो मेरे मेरे में होता है ना, तो मरने का भय नहीं। और क्योंकि अगर हम खुशी खुशी ये शरीर छोड़ते हैं, छोड़ना तो है ही ना, चाहे अभी छोड़ना है या 10 साल बाद छोड़ना है या विनाश में छोड़ना है, जब भी छोड़ना है, छोड़कर आत्मा को शरीर तो जाना, लेकर जाएगी क्या, तो छोड़ना तो है ही। लेकिन अगर खुशी खुशी शरीर छोड़ेंगे तो आगे भी कैसा शरीर मिलेगा। और प्रारब्ध, हाँ बाबा कहते हैं एडवांस पार्टी में जाएंगे, सेवा के निमित्त बनेंगे। लेकिन अगर दुखी होकर के शरीर छोड़ेंगे, बीमारी के उसमें शरीर छोड़ेंगे, वो कॉन्शियसनेस में शरीर छोड़ेंगे, तो फिर कर्म बंधन बना, आत्मा फिर से पुरानी दुनिया में ही जन्म लेने वाली है। तो फिर कैसे कर्म की भोगना को खत्म करना है, कर्म योगी बन करके। और ये भी स्मृति में रखना है कि मेरी अंतमति कैसी हो, क्योंकि शरीर छूटता ही तभी है जब कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, क्योंकि ये तन आत्मा के लिए जब बेकार हो जाता है तभी आत्मा उसको शरीर को छोड़कर जाती है। लेकिन उस समय भी, जैसे मैंने कहा, हमने दादियों को कभी भी इस भान में देखा ही नहीं। अभी कल हम ब्रजमन भाई जी से मिलकर आए, भाई साहब अहमदाबाद में है और काफी समय हो गया उनको, अभी 2-3 महीना हो गया समझो। तो मैं जब उनको मिल रही थी तो मैंने देखा कि भाई साहब कितना सहज भाव से, हालांकि वो अभी उतना स्वस्थ नहीं है, खुद खा भी नहीं सकते हैं उतना अच्छा, अभी बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी स्थिति इतनी स्थिर है, इतनी शांत है और इतना स्टेबल, जैसे कि मतलब भले शरीर से कमजोर हो गए लेकिन चेहरे पर वो नहीं दिखाई देता, चेहरे पर वो बीमारी दिखाई नहीं देती है। तो हमें भी यही लक्ष्य रखना है, तब हम उस बीमारी के समय में भी हम सेवा के निमित्त बन जाएंगे। ठीक है, तो जितना हम आत्मिक स्मृति में रहेंगे उतना ही हमारा योग भी पावरफुल होगा। कर्म में योग है तो साधारण योग है, बाबा की याद में कर्म कर रहे हैं पावरफुल योग तो नहीं कर पाते हैं, उस समय कैसा योग होता है, साधारण योग होता है ना। लेकिन जब हम योग में बैठे, अगर आत्मिक स्मृति है तो व्यस्त संकल्प नहीं के बराबर होते हैं, तुरंत हम बाबा के पास जो स्थिति बनाना चाहें वो बना लेते हैं। बाबा इसको ही एकाग्रता की शक्ति कहता है कि मन को जब चाहे, जहां चाहे, जिस स्थिति में चाहे, एक सेकंड में हम एकाग्र कर ले। हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 1 सेकंड, यही हमारे मन की कंट्रोलिंग पावर है। तो फिर हम बाबा की लगन में मगन, या बिंदु रूप स्थिति का अनुभव, या लवलीन स्थिति का अनुभव, या ज्वालामुखी योग की स्थिति का अनुभव, ये अनुभव हमारे लिए सहज होता है। और यही अनुभव विकर्म विनाश करने वाला है, योग की ये अवस्था है, तभी हमारे विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा पावन बनती है। और दूसरा, एक तो विकर्म विनाश होते हैं और दूसरा संस्कार परिवर्तन होते हैं। जो पुराने संस्कार है वो हमेशा के लिए योग अग्नि में भस्म कर दो, बाबा ऐसे कहता है। तो योग अग्नि जब जलेगी तब तो भस्म होंगे, नहीं तो कैसे भस्म होंगे। तो योग अग्नि वाला योग हो हमारा, नहीं तो हम 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, 15 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, फिर भी संस्कार कैसे हैं। पुराने संस्कार कब इमर्ज हो जाते हैं पता ही नहीं, थोड़ा समय के लिए दब जाते हैं, ज्ञान सुना या थोड़ा भट्टी वट्टी की, थोड़ा कुछ प्रोग्राम प्रमाण, थोड़ा समय के लिए दब गए, फिर जैसे ही मौका मिलता है कोई ना कोई परिस्थिति आती है, फिर वैसे के वैसे, फिर सोचते हैं ये क्या हुआ तो क्यों, क्योंकि हमने उसको भस्म नहीं किया, थोड़े समय के लिए सिर्फ उसको सप्रेस कर दिया। तो जैसे ही हवा पानी मिलता है, परिस्थिति का हवा पानी मिलते ही फिर उसकी शाखाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए दोनों का कनेक्शन है कि जितना हमारी आत्म अनुभूति पावरफुल रहेगी उतना ही हमारा कर्म योगी श्रेष्ठ जीवन रहेगा और हमारे कर्म भी श्रेष्ठ रहेंगे। ओम शांति।